الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اچھا، تو اس کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت کی کتاب مثالی عورت میں سے مثالی ماں کا موضوع پڑھ رہے ہیں، اور مثالی ماں کے موضوع کے اندر جو سب ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت. تو جو بچے جو ہیں وہ بالغ ہونے کے قریب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، بچے بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. لڑکوں کے اندر یہ عمر جو ہے وہ عموماً 11-12 سال کی عمر ہوتی ہے جب وہ قریب البلوغ ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن جو ہے وہ ایک دم سے وہ بالغ ہو جاتے ہیں جب ان کو احتلام آ جاتا ہے، تو پھر وہ بالغ ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کے اندر یہ عمر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید 8 سال بنتی ہے، 9 سال بنتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ 9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، 10 سال میں بھی ہو جاتی ہیں، 11 سال میں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ میں نہیں بلکہ اس سے کم میں ہی ہو جاتی ہیں. تو اس عمر کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے 3 پوائنٹس پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، بچے اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی دھمکیوں کو جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں، کیا کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ میرا بچہ جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نوبت بھی جو ہے وہ ہم لے کر کے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیوں آپ نے ایسا ماحول بنایا، کیوں آپ نے اپنے بچوں کو ایسی ایکسپوجرز دیے، کیوں اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ دھمکی تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اور اگر کر لیا ہے تو اب جو ہے نا وہ دھمکی کو سیریسلی لیں، اس کو اگنور نہ کریں. ٹھیک ہے، بہرحال اس کے اوپر بات ہو چکی. اب جو ہے وہ اگلا پوائنٹ صفحہ 127 کے اوپر ہے کہ پھر ان کے اندر دماغی تبدیلیاں بھی بہت آتی ہیں، مثلا their ability to learn is increased. کہ جوانی کی عمر کے قریب کے بچے بہت تیزی سے یاد کر لیتے ہیں، ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سرعت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، کاموں کو بھی بہت تیزی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی آبزرویشن بھی جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، اور ان کی یادداشت بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو عمر ہوتی ہے نا 9-10 سال 11 سال، یہ عمر قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے سب سے بہترین عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو جو ہے وہ حفظ قرآن کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کب شروع کروانا چاہیے، تو یہ 8 سال کی عمر، 8-9-10-11-12، ٹھیک ہے، یہ بہترین عمر ہوتی ہے قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی، اور کوئی اور بھی چیز اگر یاد کرنے کے لیے آپ نے ان کو لگانا ہے تو یہی عمر ہوتی ہے، کیونکہ دماغ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا ان کا کام کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہم سے غلطی اکثر یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بچے کی اس فزیکل تیزی کو ہم جو ہے نا وہ پھر ایسے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی 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 بہت ہی یعنی بہت برا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا بہت ڈانٹ ڈپٹ اور بہت ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی تیزی سے جو ہے یہ کیوں کام کر رہا ہے. تو اس کے اندر پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس کی گروئنگ یعنی یہ نارم ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس کی گروئنگ ہیبٹس ہیں، یہ یہ یعنی تقاضا ہے اس کی عمر کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اگر کوئی نقصان پہنچانے والی عادت بن گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو اگنور کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. सुरअत जो है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया है क्या, सुरअतु मिन शैतान, कि तेजी जो है ना ये शैतान की तरफ से है। क्या मतलब कि ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है तेजी के साथ कोई काम करना। ठीक है, तो अब बच्चा जो है वो तेजी के साथ काम कर रहा है, तो अब उसको जो है ना वो शैतान कहना, या उसको जो है ना वो कि ये शैतान तुमसे ये काम करवा रहा है, शैतान तुमसे काम, इसका कोई फायदा नहीं है उसको इस तरह से बोलने का। बल्कि क्या करना है कि उसके साथ तहम्मुल का मामला करना है, एट द सेम टाइम उसकी जो है ना वो तरबियत भी करनी है, यानी उसको इसकी उसकी गलती के ऊपर जो है वो उसकी इसलाह भी करनी है, लेकिन तहम्मुल के साथ और अच्छे अंदाज में इसलाह करनी है। ठीक है ना, डांट डपट, बुरा भला कहना और मारपीट, इससे इसलाह नहीं करनी, बल्कि तहम्मुल के साथ, तमीज के साथ इसलाह करनी है उसकी। इसलाह को छोड़ना नहीं है, इसलाह को खत्म नहीं कर देना है। ठीक है कि नहीं, वो तो उसकी उम्र का तकाजा है, तो इस वजह से हमने इसलाह नहीं करनी, इस वजह से हमने उसको कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है ना, वो जो करता फिरे। मिसाल के तौर पर हम अपनी, मैं अपनी जाती बचपन की जो है ना वो एक अजीब अजीब मैं सोचता हूँ, तो यानी मतलब तो हैरानी तो खैर नहीं होती, क्योंकि सोचते हैं तो बस ये है कि माशाल्लाह कितनी सच बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग। ठीक है, तो होता क्या था कि हम जो है ना जुब्बा वगैरह तो जमाने में नहीं पहनते थे, वो तो जब हजरत से ताल्लुक हुआ तो फिर हजरत की तरह का जो है वो जुब्बा पहनना शुरू किया। ठीक है, जो हजरत फरमाते हैं कि सुन्नत तरीका जुब्बा जुब्बे का यही है। लेकिन जो कुर्ता शलवार पहनते थे ना, तो कुर्ते शलवार के अंदर भी तो पॉकेट्स होती है ना, साइड पॉकेट्स होती हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो अक्सर ये होता था कि हमारा जो कद है ना वो ऐसा है कि जो साइड पॉकेट होती है ना वो होती है दरवाजे के हैंडल, दरवाजे का हैंडल होता है ना। ठीक है, तो वो उसी हाइट के ऊपर आपकी साइड पॉकेट होती है, अक्सर लड़कों का या मर्दों की इतनी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है ना वो क्या करते थे कि तेजी से जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कुदरत ऐसा होता था कि ये जो साइड पॉकेट होती थी ना कुर्ते की, वो अटक जाती थी दरवाजे के हैंडल में, और वो अटकती थी लेकिन स्पीड कम नहीं होती थी, तो इस वजह से मेरे कितने ही कुर्ते जो है वो फट गए, कितने कुर्ते फटे मुझे मुझे तादाद भी याद नहीं कि भाई वो पॉकेट जो है वो आपके हैंडल में अटक गई और आप जो है वो भागे चले जा रहे हैं, तो अब आपका कुर्ता जो है वो फट गया। ठीक है, तो नुकसान होता था, अफसोस भी होता था, और फिर यानी वालदे भी नाराज कि भाई क्या एक और कुर्ता फाड़ दिया तुमने। ठीक है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजर गया ना, उसके बाद क्या होता है कि यानी लिटरली आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी टाइम कि वो जो पॉकेट है वो अभी भी अटक जाती है कभी, वो अभी भी, क्योंकि हाइट तो एक दफा जो बन गई वो आपकी बन गई, उससे ज्यादा तो नहीं, वो ऊंची तो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी भी अटकती है लेकिन कुर्ता फटता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं फटा भाई, पहले तो इतना फटता था, अब क्यों नहीं फटता, क्योंकि अब वो स्पीड खत्म हो गई, अब वो तेजी खत्म हो गई। पिछले दिनों कोई इमरजेंसी पड़ गई थी, बच्चे के कोई पता नहीं गिरने की आवाज आई थी, क्या हुआ था, तब फिर कुर्ता फट गया, इस उम्र में आकर के 50 साल की उम्र में फिर कुर्ता फट गया। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि ऐसी आवाज आई थी जिसकी वजह से भागना पड़ गया था, तो फिर वही हो गया कि कुर्ता अटका और फट गया। ठीक है, लेकिन पहले आदतन भागते थे, मजबूरन नहीं भागते थे, आदतन भागते थे, और अब जो है वो आदतन नहीं भागते, अब कुर्ते नहीं फटते। बात समझ आ रही, इंशाल्लाह इस मिसाल से किसी को अब ये जरूर बच्चों को, हाँ हजरत ऐसे करते थे, और बाद में पता चलता है कि लोग अपने घरों में फिर ऐसी बातें कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। खैर आप करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एक तो ये फिजिकल तेजी हो गई, और इसी तरीके से जो है ना एक दूसरा भी होता है कि जहनी तौर पर तेजी। ठीक है, अब जहनी तेजी जो है ना वो हम समझते हैं कि बस एक ही अंदाज में जहनी तेजी होती है। ठीक है, कि जो पढ़ाया जा रहा है जो है ना वो बड़े गौर से जो है वो यानी फिजिकल अटेंशन के साथ जो है वो आप किसी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो। कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े अटेंशन के साथ बात को सुन रहे होते हैं, आपको नजर भी आ रहा होता है देख करके कि हाँ वो बड़ी अटेंशन के साथ बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ भी बच्चा जो है ना बड़ी अटेंशन के साथ बात सुन रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो के बात सुन तो रहे होते हैं लेकिन फिजिकली ऐसा लगता है कि जैसे वो अटेंटिव नहीं है।
फिजिकली ऐसा लगता है कि वो अटेंटिव नहीं है, लेकिन वो बात सुन रहा होता है, ठीक है। तो जब आप उनसे सवाल करते हैं ना, तो पता चलता है कि उसने बात को सुन भी लिया, उसने बात को समझ भी लिया, लेकिन देखने में लग रहा था जैसे कि वो अटेंटिव नहीं है, ठीक है ना। क्यों अटेंटिव नहीं लग रहा था? क्योंकि वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, ठीक है। तो खाली इधर उधर देखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो अटेंशन नहीं करते रहा हो, ठीक है। हाँ, जब वो दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं ना, बराबर में कोई बैठा हुआ है क्लास के अंदर, तो वो उससे जो है वो बात कर रहे हैं, तो बात करने से क्या होता है कि आपकी तवज्जो फिर बात की तरफ चली जाती है जो आप कर रहे होते हैं अपने बराबर वाले से, ठीक है। तो उसको फिर जो है ना वो रोकना पड़ता है कि भाई आप दूसरों से बात ना करें, आप जो है वो क्लास में यानी पे अटेंशन करके बैठे, ठीक है। आप क्लास में जो बात हो रही है उसको सुने बजाय इसके कि आप जो है वो अपने बराबर वाले से बात करना शुरू हो गए, तो उसको तो रोकना पड़ता है, लेकिन जो है ना वो तो इस वजह से क्लास के अंदर बच्चे अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको गेज करने का, इसको मेजर करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है यानी क्विज करते रहना, सवाल करते रहना उनसे, ठीक है ना, कि ये बात आपने कैसे समझी, ये बात आपने कैसे समझी, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। इसको जो है वो कुछ टर्म्स भी कहते हैं, ICQs होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, CQ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो कोई CCQs, पता नहीं उसको क्या बनता था, CCQs होते हैं, ICQs होते हैं, जिससे जो है ना वो टीचर जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व रखता है क्लास के अंदर, वो उनसे पूछता रहता है, ठीक है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं, वो तो जो रिटन पेपर होता है ना उसके अंदर MCQs होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, जैसे मैं आपसे करता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस, CCQ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिस तरह ये फकीर आपसे कभी 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 थोड़ी देर पहले भी एक सवाल किया था ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो हमें बकायदा टीचर्स ने बताया, मेरा मेरा अपना भी था, मेरा अपना इतना तजुर्बा नहीं रहा इसके अंदर, लेकिन क्योंकि मेरे ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो अब आप लोगों की शक्लें तो मेरी नजर नहीं आ रही होती, ना मर्दों की ना औरतों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन जो लोग लाइव क्लासेस कर रहे होते हैं ना, उन्होंने बताया कि हमें ऐसा लगता है फलाना बच्चा जो है ना वो अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास के अंदर, इधर उधर देख रहा है, बातें नहीं कर रहा लेकिन इधर उधर देख रहा है, लेकिन जब हमने कोई कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन किया ना उससे, उसने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। इसका मतलब क्या था कि वो बात सुन रहा था, पहले से तो उसको ये बात नहीं पता, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है कि वो पहले से कहां से ये सारी चीजें सुन करके आएगा, क्लास में सुन रहा था, ठीक है, और समझ भी रहा था, तो उसने जब से जवाब दिया वो सही दे दिया, ठीक है। होता है इस वजह से टीचर को भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, और पेरेंट जो है जो कि बच्चों के सबसे पहले टीचर्स होते हैं, उनको भी फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्सा और उल्टी सीधी बातें करना और इस तरह की हरकतें हरगिज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो बच्चे बलूगत की उम्र पे पहुंचते हैं, दे लव मल्टी टास्किंग वाइल स्टडी, ठीक है, वो पढ़ाई के दौरान एक जगह ही कई काम करना पसंद करते हैं, अगर चे के ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये मल्टी टास्किंग जो होती है ना, ये यानी समझने के एक इमेच्योरिटी की अलामत होती है मल्टी टास्किंग। तो मल्टी टास्किंग से जो है फिर इंसान की यकसुई मुतासर होती है और वो किसी काम का भी नहीं रहता, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग यानी बच्चे तो कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं ना, इस वजह से कर रहे होते हैं। अब हम जो है वो 40 साल की उम्र में आकर के, 35 साल की उम्र में आकर के अब हम भी वही वाली हरकत करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम भी अभी तक इमेच्योर ही हैं, हम भी अभी तक मेच्योर नहीं हुए। फिजिकली तो मेच्योर हो गए, बालग तो हो गए, ठीक है, लेकिन मेंटली मेच्योर नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। तो अब आपको बताइए कि इसका अगली बात क्या होगी फिर, ठीक है। अगली बात क्या होगी कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो सोशल मीडिया और हमारे हाथ में फोन आ गया है, या जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंटरनेट आ गया है, तो उसके बाद जो है वो हम हर वक्त जो है वो डिस्ट्रैक्टेड, हर वक्त जो है डिस्ट्रैक्टेड, हर वक्त एक वक्त में जो है ना वो कई काम कर रहे होते हैं, हत्ता कि अगर हम तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं ना, तो वो भी जो है ना वो हम बहुत सारे सोर्सेस से जो है ना वो अपना इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, हम बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाते हैं, हम बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, हमें किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बहुत नुकसानदेह चीज होती है, इससे इंसान को ना ना तालीम हासिल हो रही होती है, ना इंसान का जो है वो इस तरीके से जो है वो इसलाह हो सकती है, ना उसका तज़किया हो सकता है, ना उसका जो है वो कोई ताल्लुक बन सकता है, बस अजीब व गरीब किस्म का हम इंतशार का शिकार रहते हैं। ठीक है, तो इंतशार 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 इस वक्त जो है ना वो जो शयातीन है ना, कुफर शयातीन, ठीक है, उन्होंने इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर लिया है 100%, तकरीबन तकरीबन 100% उन्होंने इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, वो जो चाहते हैं इंसानी दिमाग के अंदर वो डालने में कामयाब हो जाते हैं, जो चाहते हैं वो इंसानी दिमाग से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों इतने आसानी के साथ वो हमारे दिमागों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने के, कंट्रोल करने के, क्यों कैसे काबिल हो गए वो, कैसे उनके पास इतना इतना इख्तियार आ गया हमारे दिमागों के ऊपर कि जो डालना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में डाल देते हैं, जो निकालना चाहते हैं वो हमारे दिमाग से निकाल लेते हैं, क्यों कैसे, ये कैसे उनके पास इतनी ताकत आ गई, कैसे इतना इख्तियार आ गया हमारे दिमाग के ऊपर। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोई दवा इजाद कर ली है कि वो हमें दवा, जैसे वैक्सीन के बारे में कहते हैं ना, ये कोविड की जो है वो वैक्सीन थी, वैक्सीन हमारे अंदर डाल दी गई, अब उसके बाद जो है ना वो हमारा सिस्टम खराब हो गया, नहीं कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे कि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, बल्कि कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है कि वो इंटरनेट के ऊपर एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम को देख करके वो, अब जब हम उस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल माउफ हो जाता है और हम जो है वो बिल्कुल उनके गुलाम बन जाते हैं, नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं है, ऐसी कोई आवाज भी नहीं है कि जिस आवाज को सुन करके जो है ना वो हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे बचपन में वो हमारे यहाँ पीक फ्रींस पाइड पाइपर, राइट, ये कहानी सुनिए, ये बच्चों की एक स्टोरी है, फोक टेल है ये, पीक फ्रींस तो वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी होती है, तो उन्होंने पाइड पाइपर को जो है ना वो अपने एड में इस्तेमाल किया था। तो पाइड पाइपर, पाइड पाइपर क्या होता था कि वो जो है ना आता था और वो अपना, उसके पास एक पाइप होता था, ठीक है, जिसको कि वो बजाता था, ठीक है, जरा मोटा सा पाइप जिसके अंदर ना वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, ट्रम्पेट टाइप का कोई पाइप, वो उसको बजाता था ना, तो उसकी जो आवाज निकलती थी ना उसके पाइप पाइप में से, तो उस आवाज को सुन करके बच्चे जो है ना वो बिल्कुल महव हो जाते थे उसकी तरफ, बिल्कुल उसकी तरफ जो है ना वो, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते थे। तो ऐसी आवाजें होती हैं कि जिनसे जो है ना वो इंसान का दिमाग जो है वो माउफ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई आवाज नहीं है काफिरों के पास कि जिससे कि उन्होंने हमें महव कर दिया, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसे कोई 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 टेक्स्ट नहीं है जिसको पढ़ करके हम माउफ हो जाते हैं, कैसे उनका उनके पास इतना कंट्रोल आ गया हमारे दिमागों के ऊपर, उसकी वजह सिर्फ यही है, एक वजह है उसकी, उन्होंने कैसे हमारे ऊपर ये कंट्रोल हासिल किया है कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीजों में मशगूल कर दिया है, इतनी सारी चीजों में मशगूल कर दिया है कि हम बिल्कुल जो है ना वो डिफोकस्ड हो गए, बिल्कुल डिफोकस्ड हो गए, अब हमारा दिमाग जो है ना वो इतना, हमारी वालदा मरहूमा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनको, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती थी है ना, बिहारी बिहारी लैंग्वेज का लफ्ज है ये शायद, ठीक है, कहती थी दिमाग पिच्ची हो गया है। ठीक है, जो गए हैं जरा बैकग्राउंड के वो शायद सुना उन्होंने ये लफ्ज पहले से, दिमाग पिची हो गया है, दिमाग है ना वो ऐसा पिचक गया है, ऐसा जो है ना वो दिमाग जो है ना वो ऐसा यानी स्पंज बन गया है, स्पंज, ठीक है, ऐसा पिचकी हुई चीज बन गया है कि किसी काबिल नहीं रहा वो, किसी काबिल नहीं रहा वो, ठीक है ना, अब जो उसके अंदर अब यानी अपने प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म के जरिए से जो चाहे उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये तरीका है कि जिसकी वजह से इंसानियत अब इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब उनको इंसानियत से कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई उनके खिलाफ जो है वो कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो है ना वो इन सारे इंसानों को अपने मीडिया के जरिए से हम जिस जिस डायरेक्शन में चाहे हाँक सकते हैं, जिस तरफ चाहे हम इनको हाँक सकते हैं, हम सही को गलत बना करके पेश करेंगे ये उसको कबूल कर लेंगे, हम गलत को सही बना करके पेश करेंगे ये उसको भी कबूल कर लेंगे। ठीक है ना, इनकी अपनी सोच समझ जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये चीज हमारे साथ हो गई है, लेकिन ये हमारे अपनी गलती है ना कि हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है, हमारी अपनी गलती है, हम खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से जो है वो अपने आप को मुंतशर करते हैं, कोई हमारा हाथ पकड़ करके तो नहीं हमको मुंतशर करता, कोई हाथ पकड़ करके कोई हमें जो है वो तलवार के जोर पर तो नहीं कि मुंतशर हो वरना तो मैं तुम्हारे गला काट दूंगा, मैं तुम्हें बंदूक से जो है वो गोली मार दूंगा अगर तुम मुंतशर मिजाज नहीं बनी, अगर तुमने जो है वो सोशल मीडिया पे जा करके वीडियोस नहीं देखी और तुमने जो है वो हर किस्म की चीजें नहीं सुनी तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। कभी किसी ने कहा हमें ये बात? कभी किसी ने हमें मारा पीटा मुंतशिर ना होने पर? कभी किसी ने हमें मारा पीटा? ठीक है, नहीं, कोई हमारे ऊपर मजबूरी नहीं है, हम अपनी मर्जी से मुंतशिर होते हैं, हम अपनी मर्जी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करना छोड़ दें और हम यकसू हो जाएं और हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं, किसी के बस में नहीं है कि वो हमें डिफोकस कर सके, किसी के बस में नहीं है कि वो हमें डिफोकस कर सके, लेकिन हम होते ही नहीं है, तो कसूर किसका है? कसूर काफिरों का तो नहीं है, कसूर शैतानों का तो नहीं है, कसूर तो हमारा अपना है ना, हमारे अपने नफ्स का कसूर है ना। ठीक है, तो तौबा कर लेनी चाहिए इस बात से। कल जो है वो एक आप में से एक खातून ने माशाल्लाह ना उनको हिदायत अता फरमाया, सुबह मुझे मैसेज करती है, हजरत आज मजलिस नहीं होगी, राइट? पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, सुबह सुबह मैसेज आता है, हजरत आज मजलिस नहीं होगी। मैंने कहा भाई कौन सी मजलिस, किस मजलिस की आप बात कर रही हैं, कौन सी मजलिस? तो थोड़ी देर के बाद जो है ना उन्होंने मुझे किसी मजलिस का जो है वो मैसेज भेज दिया, ये वाली मजलिस। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता ये मजलिस होगी नहीं होगी, जिनकी मजलिस है आप उनसे जाके पूछें, राइट? जिनकी मजलिस है आप उनसे जाकर के पूछें कि भाई आज मजलिस क्यों नहीं हुई। तो करके आ रही थी वो बैत, उन्होंने इधर करी हुई है, राइट? इस्लाही ताल्लुक इधर बनाया हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर सवालात मुझे भेजती रहती हैं, लेकिन मजलिस जो है वो किसी और शेख साहब की सुनती रहती है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो उधर भी उसी तरीके से उन्होंने भाषण दिए हुए हों, उधर भी इसी तरीके से उन शेख साहब को भी हो सकता है, पता नहीं वो व्हाट्सएप देखते हैं जवाब देते हैं नहीं देते, हो सकता है उधर भी जो है वो उन्होंने बात करी भी होगी, राइट? उधर भी उन्होंने जो है वो स्थायी ताल्लुक बनाया हुआ होगा, उधर भी वो जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपने दुखड़े सुनाती रहती होंगी, उधर भी जो है वो सवाल भेजती रहती होंगी। ठीक है ना, तो इधर भी दुखड़े, उधर भी दुखड़े, उधर भी दुखड़े, इधर भी दुखड़े, माशाअल्लाह क्या बात है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको व्हाट्सएप की नेमत अता फरमाई है, अब तो आप जो है ना वो मतलब शेखों से खेलती हैं, राइट? अब तो शेख आपकी उंगलियों पर हैं, कभी इस उंगली पे किसी शेख साहब को नचा लिया, कभी दूसरी उंगली पे किसी शेख साहब को नचा लिया, कभी तीसरी उंगली पे शेख साहब, इधर से जवाब नहीं आया तो उधर मैसेज कर दिया, उधर से जवाब नहीं आया तो इधर मैसेज कर दिया, वाह वाह क्या बात है आपकी। ठीक है ना, इधर मजलिस सुन ली, फिर उसके बाद उधर भी मजलिस सुन ली, फिर उसके बाद इधर भी मजलिस सुन ली, फिर उसके बाद उधर भी मजलिस सुन ली, वाह वाह क्या आपकी इसलाह हो रही है, क्या आपके जो है ना वो तज़किया नफ्स हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हो रहा होता फिर सिवाय इसके कि हमारा हमारा क्या हो रहा होता है, बेड़ा गर्क हो रहा होता है और कुछ भी नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा होता है हमारा। ठीक है, तो भाई यकसुई जब तक नहीं होगी ना कुछ भी नहीं होने वाला है, ठेंगा मिलेगा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, जब तक यकसुई नहीं होगी किसी एक के साथ ठेंगा भी नहीं मिलेगा, बल्कि ठेंगा भी जो है ना वो भी फ्री का नहीं आता, आपको ठेंगा भी नहीं मिलेगा, सही है, वक्त जाया करनी है अपना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यक्सु हो ना भाई आप, वो एक जगह क्लास में आपको 10,000 बातें समझाई गई, आपने एक भी सुन करके नहीं ली, ना आपने जो है वो उसको क्लास में सुना, ना आपने जो है वो तकरार कोई ग्रुप ज्वाइन किया जिसके अंदर आप उसकी जो है वो कोई तकरार कर रही होंगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो फिर आपको जब इल्म ही नहीं हासिल होगा तो आपकी खाक जो है वो आपकी इसलाह होगी फिर। ठीक है, तो ये यकसुई ना होने की वजह से जो है ना वो हमारी जिंदगी जाया, पिछली क्लास के अंदर बात हो रही थी ना वक्त कैसे जाया होने से हम बचाएं, भाई यकसू हो जाएं, यकसू हो जाएं। इल्म आपको अल्लाह ताला से मिलेगा, अल्लाह ताला असल में इल्म का मंबा है, असल में इल्म का मंबा तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाएंगे, समझ अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की एक शर्त है, अल्लाह ताला की एक शर्त है इल्म देने के लिए, वो ये है कि तुम यकसू हो जाओ, यकसू हो। ठीक है, बाकी इन्होंने क्या लिखा है, बेटी भी फोकस नहीं करती मुझे, जिन बातों का जवाब देती है टीचर के सामने बोलती ही नहीं अक्सर, और दूसरा जब तक वो अपनी बात को बोल ना दे वो आके पढ़ ही नहीं पाती, वो अपनी बात को बोल ना दे अपना, अक्सर टीचर उसको रोकती हैं फिर वो वही बोलने की कोशिश में रहती है, ये गलत बातें हैं। पहली बात तो आपकी बात ही जो है ना वही इतनी अजीब और पसंद की है कि मैं उसको सही गलत जो आप पूछ रही हैं वो तो गलत है ही, लेकिन आपकी अपनी बात भी जो है वो कुछ अजीब और किस्म की कंफ्यूजन किसी की बात है। आवर अल्लाह की रस्सी और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ दो, अल्लाह की रस्सी कितनी है, अल्लाह की रस्सियों को मजबूती से पकड़ लो, नहीं है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ दो, तो रस्सी तो एक है, अब ये लटकी भी किधर है, ये समझ में नहीं आता, अल्लाह की रस्सी कहाँ पे है भाई, रस्सी आपको मिल गई तो आप मुझे भी बता दीजिएगा, मैं पकड़ लूंगा जाकर के अल्लाह की रस्सी में, तो अल्लाह की रस्सी किधर है, अल्लाह की रस्सी कौन सी है, अल्लाह ताला की रस्सी कहाँ है, कैसे पकड़ूँ उसको। ठीक है ना, जवाब दें इसका आप अगर बता दें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह ताला की रस्सी जो है ना वो यही है। ठीक है, कि इल्म हासिल करो और यकसुई के साथ इल्म हासिल करो, डी फोकस ना हो, ठीक है ना, तो यही अल्लाह ताला की रस्सी। ठीक है, कुरान मजीद को की तिलावत करते रहना खाली, ये अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ना खाली नहीं है, वो भी तिलावत भी है इसके अंदर, लेकिन कुरान मजीद को सीखना, लेकिन कुरान मजीद को ऐसे सीखना कि फोकस हो करके, यकसू हो करके अच्छी तरीके से कुरान मजीद को सीखना, तो ये फिर अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ने के मुतादिफ होगा। अच्छा, तो बच्चे जो है ना वो जो बच्चे होते हैं तो फिर वो बच्चे होते हैं, वो यकसू नहीं होते, वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीटास्किंग होती है, वो अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ लें अगर चंद मिनट और एक्स्ट्रा लेकर के, फिर उनके अंदर कुछ सोशल चेंजेस, समाजी तब्दीलियां भी होती हैं, दे चेंज डिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू पीयर्स, दे वॉन्ट लव एंड सिक्योरिटी, वो वालिदैन की बजाय साथियों पर इन्हिसार करते हैं, वो मोहब्बत और तहफ्फुज़ का एहसास चाहते हैं, ये उनकी सोशल चेंजेस होती है। सोशल का मतलब होता है जो आप लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन, जो आपका लोगों के साथ मामला होता है ना उसको सोसाइटी कहते हैं, उन मामला को सोशल मामला कहते हैं। ठीक है, उर्दू में उसको मुआशरती तब्दीलियाँ कहेंगे या मुआशरती जरूरियात कहेंगे। ठीक है, और समाज भी इसको कहते हैं, जरा हिंदी टर्म में आ जाए तो उसको समाज का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, तो ये जो है ना फिर उनको जो है वो दूसरे लोगों की जरूरत होती है, तो अब जो है वो माँ बाप से अगर उनको ये चीजें सफिशेंट नहीं मिल रही होती हैं तो वो माँ बाप ही के साथ अपनी सोशल जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको माँ बाप से नहीं मिल रही होती हैं तो फिर वो दूसरी जगहों पर जाकर के तलाश करते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो उसके लिए फिर उनको दोस्त मिल जाते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि वो उनको दोस्तों की फिर भी जरूरत होती है। ठीक है, कि भाई वो उनकी अपनी एज के हों, अपनी जो है वो मेंटल लेवल के हों, तो माँ बाप उनके एज के नहीं होते, माँ बाप उनके मेंटल लेवल के नहीं होते, तो इस वजह से ना माँ बाप की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है
कि वो अपने बच्चों के लिए नेक दोस्तों का एहतमाम करें, नेक माहौल का, नेक साथियों का एहतमाम भी करें, इंतजाम भी करें, ठीक है, ताकि वो जो इनकी जरूरत है ना, वो फिर किसी बुरे दोस्त के साथ पूरी ना हो, बल्कि नेक दोस्त के साथ पूरी हो, ठीक है। अब नेक दोस्त किधर से मिलेंगे? मार्केट में कोई नेक दोस्त जो है वो किसी जगह पे शोकेस पे तो नहीं पड़े हुए होते ना, नेक दोस्त, और जाकर के आप जो है वो इतने डॉलर दे करके नेक दोस्त खरीद करके ले आए अपने बच्चे के लिए, तो नेक दोस्त किधर मिलते हैं? नेक दोस्त जो है वो नेक कहाँ मिलते हैं? नेक दोस्त जल्दी से बताएं, नेक दोस्त अपने बच्चों के लिए कहाँ मिलेंगे आपको? जी जल्दी से बताएं, जब तक मैं इनका मैसेज पढ़ता हूँ। ये मल्टीटास्किंग इज नॉट अप्रिशिएटेड, डज इट ऑल्सो अप्लाई टू हाउस होल्ड चोर्स और जस्ट लर्निंग? हाउस होल्ड चोर्स में मल्टीटास्किंग इतनी यानी होती है, उधर भी मल्टीटास्किंग से नुकसान होता है, अगर आप कई चोर्स को एक साथ करने की कोशिश करें तो कोई चीज अच्छी तरीके से नहीं हो रही होती, लेकिन हाउस होल्ड चोर्स में फिर भी मल्टीटास्किंग की गुंजाइश निकल आती है, ठीक है। जैसे दो काम या तीन काम जो है ना, वो औरतें, क्योंकि औरतों के जो काम होते हैं ना घर के अंदर, ये रिपेटेटिव होते हैं, ये रिपेटेटिव होते हैं, ठीक है, यानी रोजाना एक ही तरह के काम करने होते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो रोजाना एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से मल्टीटास्किंग वो अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि वो उनके लिए यानी बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड चोर्स का आपने सवाल किया है ना, तो वो आसान हो जाते हैं औरतों के लिए, क्योंकि वो रिपीटेटिव, वो बार बार दोहराने वाले काम होते हैं, ठीक है। अगर जहनी काम होते हैं ना, जिसमें कि आपको नई चीज सोचनी पड़ती है, कोई आपको फिक्र करके कोई चीज आपको अंजाम देनी है, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं चलती है। लर्निंग इज अ प्योर मेंटल एक्टिविटी, प्योर मेंटल एक्टिविटी, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं चलती, ठीक है। तो आपके सवाल का ये जवाब है। बहरहाल, तो मैंने सवाल किया था कि नेक दोस्त कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि नेक माहौल बनाने से मिलते हैं, नेक माहौल से मिलते हैं। नेक माहौल किधर मिलता है भाई? नेक महफिल में मिलते हैं, नेक लोगों की मजालिस में मिलते हैं, नेक माहौल में मिलते हैं, जब नेक माहौल का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया सबने, नेक माहौल, नेक माहौल, नेक मजलिस, सबका बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो चाह रहा था कि थोड़ा सा और आप अगर इसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं, नेक दोस्त बच्चों के लिए नेक दोस्त कहाँ से मिलते हैं, तो इसका जवाब नेक माहौल भी बिल्कुल सही जवाब है, नेक मजलिस भी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन इसका एक ज्यादा सादा सा जवाब था, नेक घरानों में नेक दोस्त मिलते, नेक घर में नेक दोस्त मिलते हैं, ठीक है। जिस घर में नेकी होती है ना, उस घर के बच्चे नेक होते हैं, तो वहां पे आपको नेक दोस्त मिलते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब वो घर आपको कहाँ से मिलेंगे? आप लोगों के घरों में दरवाजे खोल करके आप अंदर घुस करके तो नहीं देखेंगे, तो ये नेक घराने आपको कहाँ से मिलेंगे? वो फिर नेक मजलिस में मिलेंगे, ठीक है ना। वहां पे नेक लोग आते हैं, वहां पे लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो आपको पता चलेगा, अच्छा भाई फलाने घराने के अंदर जो है ना, वो गुनाहों से बचने का इंतजाम हो रहा है, टीवी नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डांसिंग नहीं है, ऊट पटांग चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस घर के बच्चे जो है वो नेक बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों का इनसे दोस्ती करने का इंतजाम करूं, ठीक है। क्या उन्होंने लिखा है? आपने कहा था फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से भी इबादत का सवाब मिलता है, नियत क्या करना चाहिए? फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम करने से इबादत का सवाब मिलता है, नियत क्या करनी चाहिए? नियत तो आपने इबादत का सवाब हासिल करने की नियत करनी है ना, ठीक है। तो आप, ये सवाल आपका जरा सा सही नहीं है, सवाल आपका ये होना चाहिए था कि हम क्या सोच करके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जिससे कि हमें सवाब मिले इबादत वाला, ठीक है। तो हम ये सोचें कि भाई इनके साथ जो क्वालिटी टाइम है ना, ये इनके ईमान की हिफाजत के लिए, ठीक है, और इनके इनकी जो है वो यानी आमाल की हिफाजत के लिए, ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए, ठीक है। तो इस नियत के साथ जब बच्चों के साथ और बड़ों के साथ आप स्पेंड करेंगे, आपको बात का सवाब मिलेगा, क्योंकि ईमान की हिफाजत जो है ये फर्ज है, ठीक है। तो फर्ज के ऊपर अमल करने से सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? बीवी के साथ, शौहर के साथ तो मामला
हदीसे मुबारका भी आप यकीनन सुन चुके होंगे कि जब शौहर बीवी को देख करके मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देख के मुस्कुराती है, तो अल्लाह ताला दोनों को देख के मुस्कुराते हैं, तो अल्लाह ताला मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन सवाब नहीं मिल रहा, ये कैसा मुस्कुराना भाई। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा सवाब मिलता है ना जब अल्लाह ताला किसी चीज को देख के खुश होते हैं, तो सवाब की तो फिर हम शुमार नहीं कर सकते। फिर अपने घर का माहौल अच्छा बनाए। हाँ, लेकिन अभी बात तो ये हो रही थी कि उनके उनके दोस्त कहाँ से मिले। ठीक है, तो अब इसमें जो गलती हो जाती है वो ये होती है कि माँ बाप जो है ना, जब अपने बच्चों के साथ बुरा मामला करते हैं ना, तो फिर जो है ना वो बच्चे, फिर ऐसा होता है कि उनको कोई भी जो है ना फिर झूठ बोल करके अपना दोस्त बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये अपने घर के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में एक बुरी फीलिंग का शिकार हो चुके होते हैं। अब शयातीन के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इनको जो है वो धोखा दे करके, इनको झूठे वादे करके, इनको अपने साथ मिला लेना। ठीक है, तो इससे हमें बचना बचना चाहिए, और इससे बचने का जो है वो एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह बुरे माहौल से मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे इल्म को हमारे लिए फायदे का सबब बनाए, और इसके ऊपर नेक नियति के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।